एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान।
और मैं हूं आपकी सह मेजबान।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके लिए बहुत जरूरी है।
हाँ,
कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड।
बिल्कुल। और ये किताब ना इस सवाल से जूझती है कि भाई, जब दुनिया लगातार हमारा ध्यान खींच रही है, फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया है ही
हर तरफ से।
हाँ हर तरफ से, तो ऐसे में हम किसी एक काम पर गहराई से बिना भटके फोकस कैसे करें? न्यूपोर्ट इसी गहरे काम यानी डीप वर्क की ताकत और उसे हासिल करने के तरीके बताते हैं। और ये आज इतना रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है।
दुर्लभ होती जा रही है।
हाँ, दुर्लभ, लेकिन इसकी कीमत, इसकी वैल्यू वो बढ़ती जा रही है।
अच्छा, और इसके लेखक कैल न्यूपोर्ट, ये भी कोई आम सेल्फ हेल्प गुरु नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स जैसे मुश्किल विषयों पर काम करते हैं।
बाप रे।
हाँ, तो उनका नजरिया बहुत अलग है। वो एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं, सबूतों के आधार पर, बड़े व्यवस्थित तरीके से।
अच्छा,
वो सिर्फ सलाह नहीं देते बल्कि खुद भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अकेडमिक रिसर्च करते हैं, किताबें लिखते हैं। उनकी और भी किताबें हैं जैसे सो गुड दे कांट इग्नोर यू, डिजिटल मिनिमलिज्म।
हाँ, सुना है मैंने।
लेकिन मजे की बात यह है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते।
क्या बात है।
हाँ, और शाम को एक फिक्स टाइम पर काम बंद कर देते हैं, तो उनकी बातों में वजन है क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं, और उनकी सलाह साइंस और साइकोलॉजी पर बेस्ड है।
तो फिर रिस्क आपका मतलब निचोड़ क्या है, एसेंस क्या है?
एक तरह से ये आज के इस भटकाव वाले युग में अपनी कॉग्निटिव सॉवरेनिटी वापस पाने का एक कॉल है।
कॉग्निटिव सॉवरेनिटी, भारी शब्द है।
हाँ, सुनने में भारी है पर मतलब सीधा है। अपने ध्यान पर, अपनी सोचने की शक्ति पर दोबारा कंट्रोल पाना, ताकि हम तय करें कि हमारा दिमाग किस पर लगे, न कि दुनिया के भटकाओ।
अपने ध्यान के मालिक खुद बनना।
बिल्कुल।
और ये किताब वैसे तो मुख्य रूप से नॉलेज वर्कर्स के लिए है, जैसे प्रोग्रामर, राइटर, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, डिजाइनर।
अच्छा,
लेकिन सच कहूं तो इसके सिद्धांत हर उस इंसान के लिए काम के हैं जो अपने काम में बेहतर होना चाहता है, अपना फोकस बढ़ाना चाहता है और शायद शायद अपने काम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाना चाहता है।
ठीक है। और किताब की बनावट कैसी है, स्ट्रक्चर?
बहुत सीधी है। दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है द आइडिया यानी क्यों। इसमें लेखक समझाते हैं कि ये डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है।
अच्छा, तो पहले क्यों का जवाब। हाँ, और इसमें वो कई तर्क देते हैं। पहला है इकोनॉमिक तर्क। वो कहते हैं कि आने वाले समय में, खासकर एआई और ऑटोमेशन के इस दौर में,
हाँ, जो आजकल हर तरफ बात हो रही है।
बिल्कुल, तो इस दौर में दो तरह के लोग सबसे सफल होंगे। एक वो जो मुश्किल चीजें तेजी से सीख सकते हैं, और दूसरे वो जो बहुत हाई क्वालिटी का काम तेजी से कर सकते हैं, मतलब एलीट लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते
और
हैं।
इन दोनों के लिए,
हाँ, कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही स्किल्स के लिए गहरे काम की, डीप वर्क की जरूरत पड़ती है। बिना फोकस के ना आप जल्दी सीख सकते हैं, ना हाई क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अच्छा,
यानी ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, ये तो करियर की जरूरत है।
बिल्कुल।
न्यूपोर्ट एक इक्वेशन भी देते हैं, हाई क्वालिटी काम इक्वल्स टू लगाया गया समय इनटू ध्यान की तीव्रता।
समय गुणा ध्यान की तीव्रता।
हाँ, मतलब अगर आप ध्यान की गहराई, इंटेंसिटी बढ़ा दें तो कम समय में भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बात ज्यादा घंटे काम करने की नहीं है, बल्कि उन घंटों की क्वालिटी बढ़ाने की है।
ये बहुत जरूरी बात है।
और पहले हिस्से में वो ये भी समझाते हैं कि कैसे फोकस करने से हमारे न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन सेल्स बेहतर तरीके से काम करते हैं, और साइकोलॉजिकली कैसे गहरा काम हमें फ्लो की स्टेट में ले जाता है।
फ्लो, वो जो तल्लीनता वाली अवस्था होती है।
हाँ, वही, जिसमें हम काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, और ये अपने आप में बहुत संतोषजनक होता है।
लेकिन अगर ये डीप वर्क इतना फायदेमंद है, इतना जरूरी है, तो फिर आजकल इतना कम क्यों देखने को मिलता है, लोग कर क्यों नहीं पा रहे?
बिल्कुल सही सवाल, और यही किताब के पहले हिस्से का दूसरा बड़ा पॉइंट है, गहरा काम दुर्लभ क्यों है। न्यूपोर्ट इसके पीछे कुछ कल्चरल और वर्कप्लेस ट्रेंड्स को जिम्मेदार ठहराते हैं।
जैसे
एक है न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब जब हमें साफ पता नहीं होता कि क्या ज्यादा जरूरी है तो हम अक्सर वो काम चुन लेते हैं जो उस पल सबसे आसान लगता है।
हाँ, जैसे मुश्किल रिपोर्ट शुरू करने के बजाय फटाक से दो चार ईमेल निपटा देना।
एग्जैक्टली। और दूसरा, आपने भी शायद महसूस किया होगा, हमेशा बिजी दिखने का प्रेशर।
ओ हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर आप शांत बैठे सोच रहे हैं तो लोग सोचते हैं काम नहीं कर रहे।
सही। इसे न्यूपोर्ट उत्पादकता के प्रॉक्सी के रूप में व्यस्तता कहते हैं, मतलब बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि नॉलेज वर्क का आउटपुट तुरंत दिखता नहीं तो लोग अक्सर बिजी दिखने को ही काम मान लेते हैं। लगातार मीटिंग, धड़ाधड़, ईमेल, भले असली काम कुछ ना हो रहा हो।
ये तो बहुत होता है आजकल।
और साथ में है टेक्नोलॉजी का असर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, जो हमें लगातार कनेक्टेड रहने और तुरंत रिएक्ट करने को उकसाता है। न्यूपोर्ट अटेंशन रेजिड्यू की बात भी करते हैं।
अटेंशन रेजिड्यू, ये क्या है?
इसका मतलब है कि जब हम एक काम से झट से दूसरे पर कूदते हैं, जैसे ईमेल चेक करने चले गए, तो हमारा दिमाग पूरी तरह नए काम पर लग नहीं पाता। पिछले काम का कुछ असर, कुछ ध्यान बंटा हुआ रह जाता है।
अच्छा, मतलब हर बार ध्यान भटकाने से हमारे मुख्य काम की क्वालिटी गिरती है।
हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा करके परफॉर्मेंस कम होती जाती है। और पहले हिस्से का तीसरा तर्क है कि गहरा काम सिर्फ पैसे या दिमाग के लिए नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए भी जरूरी है।
मीनिंगफुल लाइफ
कैसे? जब हम किसी चीज पर ध्यान लगाकर काम करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, तो उससे गहरा संतोष मिलता है, जो शायद लगातार छोटे मोटे बिखरे हुए काम करने से नहीं मिलता। ये हमें फ्लो स्टेट में ले जाता है और वो अनुभव बहुत पॉजिटिव होता है, एक उद्देश्य मिलता है।
ठीक है, तो ये था पहला हिस्सा, डीप वर्क क्यों जरूरी है, क्यों फायदेमंद है और आजकल क्यों इतना कम हो गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, नियम, यानी करे कैसे। पहला नियम है गहराई से काम करें, वर्क डीपली।
हाँ, यहाँ बात सिर्फ विल पावर की नहीं है, यहाँ बात है अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने की, एक स्ट्रक्चर बनाने की,
सिस्टम बनाने की।
हाँ, सिस्टम। न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहरे काम को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उन्होंने चार फिलॉसफी या स्टाइल बताए हैं। पहला, मठवासी।
मठवासी, जैसे साधु संत?
हाँ, कुछ वैसा ही। ये वो लोग हैं जो दुनिया से लगभग कट जाते हैं, सारे भटकाव खत्म कर देते हैं और पूरी तरह अपने काम में डूब जाते हैं। डोनाल्ड नूथ जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट इसका उदाहरण है। ये सबके लिए नहीं है, जाहिर है।
हाँ, ये तो एक्सट्रीम है। दूसरा?
दूसरा है द्विमोडल। इसमें आप अपना समय साफ तौर पर बांट लेते हैं, कुछ हिस्सा जैसे कुछ दिन या हफ्ते सिर्फ गहरे काम के लिए रखते हैं पूरी तरह आइसोलेशन में, और बाकी समय दूसरे कामों, मीटिंग्स वगैरह के लिए। कार्ल यूंग का उदाहरण देते हैं वो।
अच्छा, ये थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है। और बाकी दो, वो शायद हम जैसे आम लोगों के लिए ज्यादा काम क्यों।
हाँ बिल्कुल। तीसरी है लयबद्ध, रिदमिक। ये शायद अपनाने में सबसे आसान है। इसमें आप रोज एक तय समय, जैसे सुबह के 90 मिनट या 2 घंटे, सिर्फ गहरे काम के लिए फिक्स कर देते हैं और इसे एक रेगुलर आदत बना लेते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पर लगातार,
रोज की आदत।
हाँ। और चौथी है पत्रकारिता, जर्नलिस्टिक। ये सबसे एडवांस्ड है, थोड़ी मुश्किल भी। इसमें आप दिन में जब भी जहां भी खाली समय मिले, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो, तुरंत गहरे काम में लग जाते हैं, जैसे कोई पत्रकार डेडलाइन पर काम करता है। इसके लिए फोकस तेजी से बदलने की क्षमता चाहिए।
तो जरूरी नहीं कि कोई एक ही चुने।
नहीं, जरूरी ये है कि आप सोच समझकर कोई तरीका अपनाएं और उस पर टिके रहें, अपने लिए एक सिस्टम बनाएं। और इसमें अनुष्ठानों यानी रिचुअल्स का भी बहुत महत्व है।
रिचुअल्स जैसे?
जैसे काम शुरू करने से पहले एक खास जगह पर ही बैठना, या एक खास तरह की चाय या कॉफी पीना, दरवाजा बंद करना। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग को सिग्नल देती हैं कि अब फोकस करने का टाइम है।
अच्छा, ये आदतें बनाने में मदद करती हैं।
हाँ, इससे रोज गहरे काम में उतरने के लिए जो मेंटल एनर्जी लगती है वो कम हो जाती है।
ठीक है, तो पहला नियम हुआ गहरे काम के लिए समय, तरीका और रिचुअल तय करना। दूसरा नियम है बोरियत को गले लगाओ, एम्ब्रेस बोर्डम। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, बोरियत किसे पसंद है?
हाँ, अजीब लगता है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ध्यान लगाने की क्षमता, हमारा फोकस, एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल।
मसल।
हाँ, अगर हम इसे लगातार छोटे छोटे भटकावों से भरते रहेंगे, जैसे जरा सा खाली समय मिला नहीं कि फोन चेक कर लिया, तो ये मसल कमजोर हो जाएगी, हमें अपने दिमाग को बोरियत सहने और बिना लगातार स्टिम्युलस के रहने की आदत डालनी होगी।
लेकिन कैसे? आज की दुनिया में तो ये बहुत मुश्किल लगता है। हर तरफ कुछ ना कुछ है ध्यान खींचने के लिए।
मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। वो कुछ स्ट्रेटजीज बताते हैं। एक है, ध्यान भटकाव से ब्रेक ना लें बल्कि फोकस से ब्रेक लें।
उल्टा?
हाँ, मतलब इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज करने का टाइम फिक्स करें, जैसे दिन में 2 बार आधे आधे घंटे के लिए, बाकी समय ऑफलाइन रहें। ये नहीं कि जब भी मन किया या बोर हुए तो फोन उठा लिया।
अच्छा, इंटरनेट के लिए अपॉइंटमेंट लेना
कह सकते हैं। एक और तरीका है उत्पादक ध्यान, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसमें शरीर व्यस्त हो पर दिमाग खाली हो, जैसे टहलना, जॉगिंग करना, नहाना या गाड़ी चलाना, तब अपना पूरा ध्यान किसी एक मुश्किल प्रोफेशनल प्रॉब्लम पर लगाएं, उसे सुलझाने की कोशिश करें। इससे दिमाग को एक ही चीज पर टिके रहने की ट्रेनिंग मिलती है बिना भटके।
ये दिलचस्प है। तो बोरियत से भागने के बजाय उसे फोकस ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। सोशल मीडिया छोड़ो, क्विट सोशल मीडिया।
क्या वाकई सबको छोड़ देना चाहिए? देखिए, न्यूपॉट का तर्क थोड़ा ज्यादा सधा हुआ है। वो ये नहीं कह रहे कि हर कोई सबको छोड़ दें। वो कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी या किसी भी टूल को अपनाने से पहले शिल्पकार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
शिल्पकार दृष्टिकोण?
हाँ, मतलब पहले ये तय करें कि आपके जीवन और काम के सबसे जरूरी लक्ष्य क्या हैं, आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं। फिर किसी टूल जैसे कोई सोशल मीडिया ऐप या कोई सॉफ्टवेयर को तभी अपनाएं जब यह साफ तौर पे साबित हो जाए कि वो इन लक्ष्यों को पाने में बहुत ज्यादा मदद करता है और उसके फायदे उसके नुकसान से कहीं ज्यादा हैं।
सिर्फ थोड़ा बहुत फायदा काफी नहीं है?
नहीं, वो कहते हैं एनी बेनिफिट वाला नजरिया ठीक नहीं है। हमें पूछना होगा, क्या ये फायदा बहुत बड़ा है? क्या ये मेरे मुख्य लक्ष्यों से जुड़ा है? और क्या इसके नुकसान, जैसे ध्यान भटकना, समय बर्बाद होना, उस फायदे से कम है?
यानी हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हमें सोच समझकर चुनना होगा कि कौन सा टूल वाकई हमारे लिए कीमती है और कौन सा सिर्फ हमारा ध्यान और समय खा रहा है। वो 30 दिन के डिजिटल डिटॉक्स का सुझाव भी देते हैं, है ना?
हाँ, ये एक तरीका है ये परखने का कि क्या कोई टूल सच में जरूरी है या हम सिर्फ उसके आदि हो गए हैं या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हैं। 30 दिन उसे इस्तेमाल ना करें और फिर देखें कि क्या वाकई आपकी जिंदगी या काम पर कोई बुरा असर पड़ा। लक्ष्य ये है कि हम टेक्नोलॉजी के पैसिव कंज्यूमर ना बने, बल्कि सोच समझ कर इंटेंशनली उसका इस्तेमाल करें।
सही बात है, एक्टिव यूजर बने, पैसिव नहीं। और चौथा और आखिरी नियम है, उथलेपन को सुखाओ, ड्रेन द शैलोज। इसका क्या मतलब है? शैलोज मतलब?
शैलोज यानी वो सतही काम, वो काम जो जरूरी लगते हैं या करने पड़ते हैं पर असल में ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं मांगते और ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, बहुत सारी अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स में जाना, छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम, सोशल मीडिया पर स्क्रोल करना।
नियम का मतलब है कि हमें जानबूझकर इन सतही कामों को कम करना होगा ताकि गहरे काम के लिए ज्यादा समय और दिमागी ऊर्जा बचे।
लेकिन ये काम तो करने ही पड़ते हैं ना, कई बार इन्हें कैसे कम करें?
हाँ, कुछ तो करने ही पड़ते हैं, पर न्यूपोर्ट कुछ तरीके बताते हैं उन्हें मैनेज करने के। पहला, अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करें। टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीक इस्तेमाल करें। इससे पता चलता है कि समय जा कहां रहा है और आप जानबूझकर गहरे काम के लिए बड़े बड़े ब्लॉक रख सकते हैं।
हर मिनट को? ये तो बहुत मुश्किल लगता है।
शुरू में लग सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर मिनट का हिसाब रखें। मोटा मोटा ब्लॉक बनाना भी काफी है। दूसरा, हर एक्टिविटी की गहराई को मापें। अंदाजा लगाएं कि किसी काम को करने में कितनी दिमागी गहराई लगती है। इससे पता चलेगा कि कौन सा काम सच में डीप है और कौन सा शैलो। फिर कोशिश करें कि शैलो कामों में कम से कम समय लगे।
अच्छा, अपने काम का ऑडिट करना एक तरह से, नहीं देंगे।
बाउंड्री सेट करना।
हाँ, और चौथा, अपना काम एक निश्चित समय तक समाप्त करें। जैसे तय कर लें कि शाम 6 बजे या 7 बजे के बाद काम नहीं करेंगे। यह आपको दिन में ज्यादा जरूरी कामों को प्राथमिकता देने और फालतू कामों को टालने पर मजबूर करेगा। इसे वो फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी कहते हैं।
ये सारे नियम तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अगर हम पूरी किताब के मुख्य संदेशों को समेटें तो एक बड़ी बात यह लगती है कि गहरे और उथले काम में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये वोकैबुलरी ही बड़ी काम की है।
बिल्कुल, ये हमें अपने काम को एनालाइज करने का एक फ्रेमवर्क देती है। दूसरा ये कि गहरा काम अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि शायद आर्थिक जरूरत बनता जा रहा है, सर्वाइवल स्किल है।
हाँ, तीसरा, हमें इस बिजनेस कल्चर मतलब व्यस्त दिखने वाले कल्चर पर सवाल उठाना होगा। क्या हम सच में प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ बिजी दिख रहे हैं?
सही कहा। चौथा, और ये मुझे बहुत उम्मीद देता है, कि फोकस करना एक हुनर है। ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है।
ये अच्छी खबर है।
हाँ, और पांचवा, हमें अपने ध्यान को लेकर ज्यादा इरादतन यानी इंटेंशनल होना होगा। सोच समझकर फैसले लेने होंगे कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में।
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे गहरे काम की परिभाषा ही आपने बताई थी।
हाँ, व्यावसायिक गतिविधियां जो विकर्षण मुक्त एकाग्रता की स्थिति में की जाती हैं, जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को उनकी सीमा तक ढकेलती हैं, ये प्रयास नया मूल्य बनाते हैं, आपके कौशल में सुधार करते हैं और इनकी नकल करना कठिन होता है।
इसमें सब कुछ आ गया, फोकस, चैलेंज, वैल्यू क्रिएशन, स्किल इम्प्रूवमेंट और दुर्लभता।
बिल्कुल। और एक और लाइन जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगती है, गहरे काम करने की क्षमता ठीक उसी समय दुर्लभ होती जा रही है जब ये हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से मूल्यवान होती जा रही है। परिणाम स्वरूप कुछ लोग जो इस कौशल को विकसित करते हैं और फिर इसे अपने कामकाजी जीवन का मूल बनाते हैं, वे कामयाब होंगे।
ये तो सीधी चेतावनी भी है और एक मौका भी। सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है।
एग्जैक्टली।
और एक और विचार जो नियम 2 बोरियत को गले लगाओ से जुड़ा है, गहरे काम में सफल होने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को विचलित करने वाली उत्तेजनाओं का विरोध करने में सहज होने के लिए फिर से तार लगाना होगा। ये पर्याप्त है कि आप उनकी ध्यान आकर्षित करने की क्षमता को समाप्त कर दें। मतलब पूरी तरह उनसे बचना शायद मुमकिन न हो, पर उनकी पकड़ ढीली करनी होगी।
ध्यान पर अपना कंट्रोल बढ़ाना। हाँ, और एक आखिरी विचार जो शायद सबसे गहरा है, आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, आप किससे प्यार करते हैं, ये उसका योग है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। ये आइडिया उन्होंने विनिफ्रेड गैलागर से लिया है।
वाह, मतलब हमारा फोकस ही हमारी रियलिटी तय करता है। गहरा ध्यान मतलब एक ज्यादा समृद्ध जीवन
कह सकते हैं।
इन सब बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? सुनने में सब बहुत अच्छा है, पर अमल में लाना?
हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, पर शुरुआत छोटे कदमों से की जा सकती है। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम के दिन में सिर्फ 90 मिनट का एक डीप वर्क ब्लॉक तय करें। उस समय कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ आपका सबसे जरूरी मुश्किल काम।
सिर्फ 90 मिनट,
ये किया जा सकता है।
बिल्कुल।
या फिर ईमेल चेक करने का टाइम फिक्स कर लें। हर घंटे चेक करने के बजाय दिन में 2 या 3 बार ही देखें। इससे बीच बीच में फोकस नहीं टूटेगा।
और निजी जिंदगी में?
निजी जिंदगी में शायद अगली बार जब आप कहीं लाइन में इंतजार कर रहे हों या ट्रैफिक में फंसे हों, तो आदत के तौर पर फोन निकालने के बजाय बस अपने विचारों के साथ रहें या आसपास देखें, बोरियत को थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें।
हाँ, उस खालीपन से घबराना नहीं।
सही। या फिर कोई हॉबी या स्किल सीखने के लिए हफ्ते में कुछ घंटे निकालें जिसमें आप पूरी तरह डूब सकें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना या पेंटिंग करना।
ये छोटी छोटी आदतें शायद ध्यान की मांसपेशी को मजबूत करेंगी।
हाँ, धीरे धीरे असर दिखेगा।
मेरे लिए इस किताब से एक बड़ी सीख ये है कि किस स्ट्रक्चर और अनुशासन कितना जरूरी है। सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता, हमें अपने लिए सिस्टम बनाने होंगे जो गहरे काम को सपोर्ट करें, उसे आसान बनाएं। ये व्यस्तता के महिमा मंडन के खिलाफ एक जरूरी आवाज है।
बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे दिलचस्प शायद तकनीक के प्रति वो शिल्पकार दृष्टिकोण है। ये हमें याद दिलाता है कि हर नई चीज अच्छी हो जरूरी नहीं, हमें हमेशा पूछना चाहिए कि क्या ये वाकई मेरे लक्ष्यों में मदद कर रही है या सिर्फ भटका रही है।
सही।
ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के नुस्खे नहीं देती, ये एक ज्यादा सार्थक, फोकस्ड और शायद ज्यादा इंसानी तरीके से जीने का नजरिया पेश करती है, और ये आज के दौर में बहुत बहुत कीमती है।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है, आज या इस हफ्ते वो कौन सा एक छोटा बदलाव कर सकते हैं जिससे उनके गहरे काम के लिए थोड़ा ज्यादा समय या ध्यान बच सके। शायद सिर्फ 30 मिनट का भटकाव मुक्त समय निकालना या सोने से पहले आधे घंटे फोन दूर रखना।
बिल्कुल।
कोई एक छोटा कदम।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।